ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रूपये का होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दी। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और किसानों को मदद मिलेगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रूपये की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की ये पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2-2 परियोजनाएं और कोयला, बिजली और जल संसाधन की 1-1 परियोजना शामिल है। इनकी लागत 76,000 करोड़ रूपये है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता परियोजना के अपेक्षित लाभों से भी वंचित हो जाती है। गुजरात में लगातार दूसरे दिन भी राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बड़ोदरा, देवभूमि द्वारिका और जामनगर सर्वाधिक प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में एक उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कई जिलों में मौसम विभाग से जारी अचानक बाढ़ की चेतावनी के मद्देनजर जिला अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए विभिन्न राहत और बचाव एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए भी कहा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को 30 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ हिंद प्रशांत पुलिसिंग पहल का समर्थन किया। ये पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास है। टोंगा में हिंद प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं की बैठक के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था की चुनौतियों से निपटना, आंतरिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और संकट के समय में पारस्परिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशांत देशों की क्षमता को बढ़ाना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरालंपिक खेलों का शानदार आगाज हुआ। भारत समेत 167 देशों के खिलाड़ियों में परेड के दौरान जबरदस्त उत्साह दिखा। उद्घाटन समारोह पहली बार स्टेडियम से बाहर चैम्स एलिसीस और प्लेस डे ला कोंकोर्ड में आयोजित हुआ। पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं हांगजो में एशियाई पैरा खेलों में शॉटपुट में भाग्यश्री जाधव ने रजत पदक जीता था। इस बार 12 विभिन्न खेलों में 84 एथलीटों के साथ देश के पैरालंपिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दल शामिल हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।